आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा, पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की विरासत का हिस्सा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीने के पानी को लेकर सभी नगर निगमों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ली बैठक। बोले, दोबारा ना हो इंदौर जैसी घटना। फिर बदला प्रदेश का मौसम, सुबह 24 जिलों में रहा कोहरा, जनजीवन प्रभावित। और 5 जनवरी से भोपाल में शुरू होगी 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा राइफल शूटिंग प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान समस्त मानवता के लिए है और उनके पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की विरासत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का शीर्षक है प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध से संबंधित प्रदर्शनी के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी की सूची का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के ये पवित्र अवशेष भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि एक सदी से अधिक के लंबे इंतजार के बाद ये अवशेष भारत लौटे हैं।
भगवान बुद्ध के पवित्र रिलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य है। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है।
श्री मोदी ने कहा है कि अब भारतीय भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को लोकप्रिय बनाने के अनुरूप है, साथ ही ये युवाओं और संस्कृति के बीच संबंधों को मजबूत बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था को लेकर वर्चुअल माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में विशेष निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराएं, टंकियों की साफ सफाई हो। उन्होंने कहा कि जल प्रदाय के लिए SOP भी जारी की जा रही है, इसका पालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन का चिन्हांकन किया जाए। जल प्रदाय से संबंधित शिकायत को इमरजेंसी श्रेणी में रखकर 48 में ही हल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर जिला स्तर पर निगरानी कमेटी के माध्यम से पूरी व्यवस्था देखें। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इंदौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। राज्य सरकार ने इंदौर में दूषित पेयजल की घटना के संबंध में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रभावित भागीरथपुरा का मुआयना किया। उन्होंने घर घर जाकर टैंकरों के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे पानी पीने की अपील की। इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्षितिज सिंघल को इंदौर नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य शासन ने शुक्रवार को नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटा दिया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने बताया कि ये रेलगाड़ी रात्रिकालीन और लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि पूरी तरह से वातानुकूलित रेलगाड़ी इस महीने गुवाहाटी और कोलकाता के बीच शुरू की जाएगी।
वंदे भारत स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के संकल्प का हिस्सा है। ओवरनाइट जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर एक टोटली नए डिजाइन से बनाया गया है। हर एक चीज का ध्यान रखकर इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। शुरुआत गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी वंदे भारत स्लीपर की, और इस साल करीब करीब 10 और ट्रेन बनेंगी। टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि क्षेत्रीय विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अटल प्रोग्रेस वे परियोजना से प्रदेश के चंबल क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस मार्ग से मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले, राजस्थान से निकल रहे दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे और उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ हाईवे से जुड़ेंगे। इससे क्षेत्र की कोटा, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, आगरा और दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा। परिणाम स्वरूप क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन और आवागमन को प्रोत्साहन मिलेगा। राजधानी भोपाल को एक बड़ी यातायात सौगात मिलने जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने आज निषादपुरा रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। ये आरओबी देश का पहला ऐसा ओवरब्रिज होगा जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। निषादपुरा क्षेत्र में निर्माणाधीन ये महत्वाकांक्षी रेलवे ओवरब्रिज नवम्बर माह तक पूर्ण होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने से नया और पुराना भोपाल सीधे तौर पर आपस में जुड़ जाएगा। आरओबी करौंद और छोला क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देगा जिससे यातायात सुगम होगा। ये ओवरब्रिज भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से लगभग 9 लाख नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब खबर मौसम की। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट के चलते आमजन ठिठुरन महसूस कर रहे हैं और शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा जा रहा है। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। आज सुबह भी उत्तरी जिले में कोहरे का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद सर्दी और तेज होगी। आज सुबह से भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सीधी, धार, गुना, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, दमोह, मंडला, सागर, सतना, श्योपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खजुराहो समेत कई जिलों में कोहरा छाया रहा। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच शीतलहर में पाला से बचाव के लिए कृषि विभाग ने आवश्यक सलाहें दी हैं। अब बात खेल की। स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय शालेय क्रीड़ा राइफल शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 का भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 जनवरी को दोपहर 2 बजे शुभारंभ करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 9 जनवरी तक होगा। प्रतियोगिता में 14 से 19 आयु वर्ग के बालक बालिका भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा आयुक्त, शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहेंगे। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ 44 दिन चलने वाले माघ मेले की शुरुआत आज प्रयागराज के संगम पर हुई। माघ मेला प्राधिकरण के अनुसार 21,50,000 श्रद्धालुओं ने आज शाम 4 बजे तक संगम में पवित्र स्नान किया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बार मेला क्षेत्र 800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। पार्किंग की सुविधाएं भी 42 स्थानों पर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सुसनेर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आज कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाया गया। खंडवा में कल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया गया। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर अधिकारियों ने जिले के सभी नगरीय निकायों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों का निरीक्षण किया। नीमच जिले में नगरीय क्षेत्रों में दूषित पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा जिला स्तरीय हेल्पलाइन स्थापित की गई है। नर्मदापुरम जिले में धान उपार्जन की प्रक्रिया जारी है। ये खरीदी 20 जनवरी तक होगी। बैतूल जिले में 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।